मुख्य समाचारों में, ग्रेटर सिडनी का लॉकडाउन आधिकारिक तौर पर 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया। हिरासत में मृत मूल निवासी के परिवार द्वारा जवाबदेही, और भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम होते। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। न्यू साउथ वेल्स में सामुदायिक प्रसारण के 97 नए मामले दर्ज किए गए, और ग्रेटर सिडनी के लॉकडाउन को कम से कम 2 सप्ताह के लिए यानी 30 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नए मामलों में से 70 सिडनी के दक्षिण पश्चिम में पाए गए और 24 मामले संक्रामक होने के दौरान समुदाय में मौजूद थे। न्यू साउथ वेल्स में अब 71 लोग कोविड 19 के कारण अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 20 गहन देखभाल यानी इंटेंसिव केयर में हैं। प्रीमियर ग्लैडिस पेरिजिक्नियन का कहना है कि समुदाय में फैले कोविड 19 की सीमा को देखते हुए लॉकडाउन का विस्तार करना आवश्यक था।
The current settings in terms of what people can't do won't change for at least 2 weeks. Of course, if health advice changes and we need to do anything further, we will. But my message is that home learning will continue in those areas where it's home learning for at least another 2 weeks, and the existing settings will be in place for at least another 2 weeks.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ एक वर्चुअल कम्युनिटी लीडर्स फोरम में भाग लेने वाले कई डॉक्टर्स फेडरल सरकार पर दक्षिण पश्चिम सिडनी क्षेत्रों के लिए टीकों का कोटा बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जीपी और सामुदायिक कार्यकर्ता डॉक्टर जमाल रीफी ने उस मंच में भाग लिया जो सिडनी के नवीनतम कोरोना वायरस प्रकोप के बारे में चिंताओं को सुनने के लिए आयोजित किया गया था। डॉक्टर रिफी ने SBS अरेबिक 24 को बताया कि उन्होंने श्री मॉरिसन को दक्षिण पूर्वी सिडनी के जीपी और क्लिनिक्स को और अधिक वैक्सीन खुराक उपलब्ध कराने के लिए कहा।
I also suggested that it would be good if we could ease the eligibility requirements for the vaccine rollout so that we can vaccinate as many people as possible as quickly as possible.
विक्टोरियन अधिकारियों ने न्यू साउथ वेल्स के रिमूवलिस्ट से और सिडनी से लौटे एक परिवार से जुड़े 7 नए स्थानीय कोरोना वायरस संक्रमणों का पता लगाया है। 4 मामले मैरीमोंग में एरियल अपार्टमेंट बिल्डिंग के निवासी हैं जहां रिमूवलिस्ट थे, और दूसरा एक व्यक्ति है जो उसी समय पर क्रेगीबर्न के कोल्स में था जब ह्यूम का परिवार वहां गया था। स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपार्टमेंट परिसर के अलावा हाई पॉइंट शॉपिंग सेंटर, MCG सहित कई नए एक्सपोजर साइट्स को नामित किया है। विक्टोरिया के कोविड 19 परीक्षण कमांडर जोरेन वीमर का कहना है कि अधिकारी और आगे परीक्षा परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फेडरल विपक्ष ने सरकार पर लॉकडाउन में चुने हुए ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए ही आर्थिक समर्थन देने की बात करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कल यानी 13 जुलाई को उन लोगों के लिए कोविड 19 आपदा भुगतान में वृद्धि की घोषणा की जिनके काम के घंटे ग्रेटर सिडनी के लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि न्यू साउथ वेल्स को कोई प्राथमिकता दी जा रही है, और कहा कि यदि कोई अन्य ऑस्ट्रेलियन अधिकार क्षेत्र विस्तारित लॉकडाउन के अधीन है तो वही व्यवस्था की जाएगी। लेकिन लेबर के ट्रेजरी प्रवक्ता जिम चार्मस का कहना है कि विक्टोरिया के साथ पिछले लॉकडाउन के दौरान अलग तरह का व्यवहार किया गया था।
We shouldn't be playing state of origin when it comes to federal support during a pandemic. Victorians have got every right to be filthy at a prime minister and a treasurer which abandoned them in their hour of need. The prime minister needs to be able to see beyond his petty partisan differences.
दक्षिण ऑस्ट्रेलियन अधिकारी तीसरे संभावित कोविड 19 एक्सपोजर साइट की जांच कर रहे हैं जो न्यू साउथ वेल्स के संक्रमित रिमूवलिस्ट से जुड़ा है। एडिलेड से लगभग 100 किलोमीटर पूर्व में टेलम बेंड के एक सर्विस स्टेशन और कैफे पहले से ही पहचानी गई 2 साइट से अब तक कोई भी पुष्टि किए स्थानीय मामले नहीं जुड़े हैं। लेकिन प्रीमियर स्टीवन मार्शल का कहना है कि अधिकारी अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रिमूवलिस्ट लोग शहर में कहीं और भी रुके थे। एक 43 वर्षीय निम्बा व्यक्ति हिरासत में मृत्यु होने वाले नवीनतम स्वदेशी व्यक्ति बन गए हैं। द एबोरिजिनल लीगल सर्विस का कहना है कि फ्रैंक कोलमैन पिछले हफ्ते जुलाई 8 को लॉन्ग बे करेक्शन सेंटर के अपने सेल में पाए गए थे और उनका परिवार उनकी मौत के बारे में जवाब मांग रहा है। 1991 में रॉयल कमीशन इनटू एबोरिजिनल डेथ्स के बाद से हिरासत में और पुलिस घटनाओं में लगभग 500 राष्ट्र के प्रथम लोगों की मृत्यु हुई है। बेटी लकोटा कोलमैन ने NITV पर अपने पिता, जिन्हें गुड कोलमैन के नाम से भी जाना जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी है।
We want to remember Dad for who he was, a proud Nambour man, staunch and proud in his Aboriginal culture. He was outgoing and friendly. He made everyone smile and laugh. And Dad was a loving man, and he was deeply loved in return. So we will miss him dearly.
किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए 131114 या सुसाइड कॉल बैक सर्विस को 1-300-659-467 पर संपर्क करें। क्वींसलैंड सरकार ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए कॉमनवेल्थ से राज्य के वित्त पोषण से मेल खाती हुई फंडिंग का आग्रह कर रही है, क्योंकि यूनेस्को ने इसे खतरे के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की है। फेडरल सरकार ने पिछले महीने कहा था कि लगातार रीफ ब्लीचिंग की घटनाओं के बाद विश्व धरोहर स्थल की सूची को बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र के निकाय की सिफारिश से इसे अनदेखा कर दिया गया था। यूनेस्को जलवायु परिवर्तन पर अधिक सरकारी कार्यवाही का आह्वान कर रहा है, लेकिन राष्ट्रमंडल इस सिफारिश सूची का विरोध कर रहा है। फेडरल एनवायरमेंटल मिनिस्टर सुजन ली इस सप्ताह यूरोप में हैं ताकि देशों को इस सिफारिश के खिलाफ मतदान करने के लिए मनाने की कोशिश की जा सके। भारत में संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसे एक दिन पहले सरकार ने 18 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में सरकार विपक्षी दलों से मानसून सत्र को सुचारू रूप ढंग से चलाने पर सहायता मांगेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया है। NDTV के सूत्रों ने बताया कि मानसून सत्र में सरकार 30 बिल लेकर आएगी, इसमें से 17 बिल नए हैं। सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से कहा जाएगा कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उधर विपक्ष महंगाई, कोरोना से निपटने में नाकामी, रफाल जैसे मुद्दों को संसद में उठाएगा। और भारत केरल में कल मंगलवार को जीका वायरस का चौथा मामला सामने आया, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 23 हो गई। राज्य सरकार ने 17 और 18 जुलाई को 2 दिन के पूर्ण लॉकडाउन का भी ऐलान किया है। और भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 38,792 नए मामले सामने आए और 624 लोगों की मृत्यु हुई है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 74 सेंट के बराबर है, वहीं भारत के 55.64 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में गृह मामलों की मंत्री कैरन एंड्रयूज का कहना है कि वो नागरिकता प्रक्रिया का समर्थन करती हैं, जिनमें पूर्व वालेबी स्टार क्वाड कूपर का आवेदन खारिज किया गया था। कूपर का कहना है कि उन्हें बिना किसी स्पष्ट अस्पष्टीकरण के ऑस्ट्रेलियन नागरिकता के लिए बार बार रद्द कर दिया जाता है। 33 वर्षीय अभी भी न्यूजीलैंड की नागरिकता रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय रग्बी टीम के लिए 70 टेस्ट खेलने से पहले 13 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया आ चुके थे। सुश्री एंड्रयूज ने रेडियो स्टेशन 4BC से कहा है कि वो निर्णय का समर्थन करती हैं।
There's absolutely no question that he's been an absolutely fantastic athlete. He's been an inspiration to so many Australians. Conferring citizenship on someone is not a decision that the government ever takes lightly. So we need to make sure that we are going through the right processes.
और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी बृहस्पतिवार को पर्थ में बौछारों में राहत, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री। एडिलेड में बौछारें बढ़ेंगी, अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री। मेलबर्न में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। होबार्ट में रुक रुक के बारिश, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री। कैनबरा में बौछारें, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री। सिडनी में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। और डार्विन में मुख्यतः धूप रहेगी, उमस भी रहेगी, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।